हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आज श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने से पहले शिला वक्रेश्वर पंडित जी के विषय में पढ़ेंगे समाधि पुस्तक से, जो कि हिजोरिनस महानदी स्वामी महाराज के द्वारा लिखित है। शिला वक्रेश्वर पंडित, एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने भावातिरिक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वक्रेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। गायन व नर्तन में पारंगत वक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, शिवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कली काल में सुख जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सब महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतरलीन श्री गौरांग हरी बोल का निनाद करते हुए सबसे कृष्ण नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए भगवान गौर हरि भावन मान में नृत्य करते। उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। चैतन्य भागवत, वक्रेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए हुए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हुए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं, तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। वक्रेश्वर पंडित परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधा कांत के अर्चविग्रह प्रतिष्ठापित किए। कवि कर्णपुन के कथनानुसार वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री वक्रेश्वर पंडित की, वक्रेश्वर पंडित अरुवातिथि महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 7 और 8। श्लोक संख्या 7 का तात्पर्य नहीं है और बोर्ड पे श्लोक संख्या 8 है, तो पहले हम श्लोक संख्या 7 पढ़ते हैं। श्री ऋषि उवाच, धर्म वा श्रोतु कामेन यूयम् मे प्रत्युदारिता एष वा प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। परम साधु ददीची ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं कल तो अवश्य मुझे छोड़ देगा। श्लोक संख्या 8। या ध्रुवणात्मना नाथा ना धर्मम ना यशा पुमान इहेत भूत दया सा शोच्या स्थावर रैरपी। यो ध्रुवणात्मना नाथा ना धर्मम ना यशा पुमान इहेत भूत दयाया सा शोच्या स्थावर रैरपी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। यह जो कोई अध्रुवेण अस्थाई, आत्मा ना शरीर से, ना था हे देवो, ना नहीं धर्मम धार्मिक नियम, ना नहीं यशः कीर्ति, पुमाना मनुष्य इहेता के लिए प्रयत्न करता है, भूत दया जीवों के लिए दया से, सह वह मनुष्य, शोचः शोचनीय स्थावर ही जड़ जीवों के द्वारा, अपि भी। अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। हे देवो, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और ना धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति का के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। दोहराएंगे हमारे पीछे, हे देवो, जो ना तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और ना धार्मिक नियमों या अक्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों के द्वारा धिक्कारा जाता है। तात्पर्य, इस प्रसंग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने एक आदर्श उपस्थित किया है। जहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, श्रीमद् भागवतम 11:5-34 में कहा गया है, त्यक्त्वा सुदस्त्यज्य सुरेप्सिते राज्य लक्ष्मीम धर्मेष्ट आर्यवच सायद्गायरण्यम माया मृगम दायतेप्सित मंधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम भगवान के उन चरण कमल को नमस्कार करते हैं जिनका हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपना ग्रस्त जीवन, यहाँ तक कि अपनी नित्य संगनी को भी त्याग दिया, जिनकी पूजा स्वर्ग के वासी तक करते हैं। वे माया के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है नागरिक आत्महत्या, किंतु संन्यास प्रत्येक ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अत्यंत तरुणी एवं सुंदरी थी और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनका पारिवारिक जीवन इतना मधुर था कि देवता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार की पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर सन्यासी का जीवन बिताया। इसी प्रकार उनके 6 गोस्वामी समाज में अच्छे पदों पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तोच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री, जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश को करुणाया। उन्होंने भिक्षुकों का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगोटी तथा फटी गुदड़ी कंथा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण महानामित आंदोलन में सम्मिलित हों। भूत दया माया मृगम दैत्यप्सितम तथा दीन गणेश को करुणाया, इन शब्दों में यही अर्थ निकलता है। ये शब्द उन लोगों के लिए जो मानव समाज को उठाना चाहता है अत्यंत सार्थक हैं। मनुष्यों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामी तथा उनसे भी पूर्व महर्षि दधीचि जी के आदेशों का अनुकरण करते हुए कृष्णा भावनामित आंदोलन में सम्मिलित हों। क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने देकर मनुष्यों को चाहिए कि उसे अच्छे कार्यों में लगाए। अंततः इस शरीर को नष्ट होना है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसका उत्सर्ग धर्म फैलाने के शुभ कार्य में करे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है और आज का श्लोक हम सबके जीवन के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हुए और श्री राधा राधिका रमन जी की प्रसन्नता के लिए इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सशक्त इसका तात्पर्य दिया है। उससे पहले कुछ प्रसंग पर चर्चा करेंगे, आप सब में से कुछ भक्त लोग प्रतिदिन नहीं आते होंगे। देवताओं और वृत्तासुर का युद्ध हो रहा है। वृत्तासुर दिखने में असुर है लेकिन वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त है, और वृत्तासुर से जब देवताओं का युद्ध होता है, ये घटना सत्ययुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ की घटना है। सभी देवता इंद्र के अपराध के कारण अपने राज्य से वंचित हो जाते हैं और सब यज्ञ करते हैं। यज्ञ से उनकी रक्षा विश्वरूप करते हैं जो कि त्विष्टा के पुत्र है, लेकिन विश्वरूप यज्ञ में बेईमानी करते हैं, असुरों को भी यज्ञ का प्रसाद देते हैं, तो इंद्र विश्वरूप की हत्या कर देते हैं। तब विश्वरूप के पिता त्विष्टा एक यज्ञ करके असुर की उत्पत्ति करते हैं जिनका नाम है वृत्तासुर। और वृत्तासुर जब देवताओं का युद्ध होता है तो वृत्तासुर सारे के सारे देवताओं को निगल जाता है पूरा। तो सब जब देवतागण बड़े परेशान होते हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। देवतागण प्रार्थना करते हैं कि आपने असुरों के वध के लिए अलग अलग अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, अब वृत्तासुर के वध के लिए भी अवतार लीजिए। तो भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूं, और एक बार जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तो किसी भी जीव के लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा प्रसन्न उन भक्तों से होता हूं जो मुझसे कुछ नहीं चाहते। आप लोगों ने डिमांड की कि वृत्तासुर के वध के लिए अवतार लो, तो मैं वृत्तासुर को कैसे मार सकता हूं? वृत्तासुर तो मेरा भक्त है और वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने उनका वध करना है तो एक उपाय बताते हैं कि आप जाइए दधीचि मुनि के पास, और उनका शरीर ज्ञान वैराग्य तपस्या और व्रत के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया है। अगर हम ज्ञान का पालन करते हैं, वैराग्य का पालन करते हैं, व्रत लेते हैं, तपस्या करते हैं, तो शरीर कमजोर नहीं पड़ता, शरीर शक्तिशाली हो जाता है। तो आप जाइए उनसे वो शरीर मांगिए और उनके शरीर से आप वृत्तासुर का वध कर सकते हैं। तो सारे देवतागण दधीचि मुनि के पास आते हैं। दधीचि जी अथर्व के पुत्र हैं और उनके शरीर की रक्षा स्वयं नारायण कवच कर रहे हैं, और यही नारायण कवच उन्होंने त्विष्टा को दिया था। त्विष्टा से विश्वरूप के पास आया था, उस विश्वरूप से देवताओं के पास ही आया था। तो वो नारायण कवच से उनकी रक्षा हो रही है और देवतागण आगे उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, भगवान की आज्ञा है कि आप हमें अपना शरीर दे दीजिए। तो ऋषि जो वो की परम ऋषि को बताया गया है, श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर नेताई की, जो परम ऋषि दधीचि थे, उन्होंने देवताओं को कहा कि मैं तुम्हें शरीर नहीं दे सकता, कैसे दे सकता हूं, ये शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है, अगर स्वयं विष्णु भी शरीर को मांगने आएंगे मैं नहीं दूंगा। क्योंकि सभी शास्त्रों में कहा गया कि अंतिम समय तक हमें शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तो मैं शरीर जो मुझे इतना प्रिय है कैसे दे दूं, अगर विष्णु भी मांगने आएंगे मैं नहीं दूंगा। तो सब देवतागण थोड़े से हताश हो जाते हैं, लेकिन ऋषि ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि वो देवताओं से कुछ धर्म का सिद्धांत सुनना चाहते थे। तो फिर देवताओं ने धर्म का उनको सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उससे याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु नहीं मांगेगा। कोई भिखारी दाता से मांगेगा और उसको मालूम है कि इससे याचक दाता को कठिनाई हो रही है तो याचक को, भिखारी को मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक भिखारी की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उससे देने में इनकार नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई देने वाला भिखारी की पीड़ा को समझेगा तो उसे अवश्य दान दे देना चाहिए, और अगर मांगने वाला अगर देने वाले की पीड़ा को जानता है तो उसे उसको नहीं मांगना चाहिए। तो इस धर्म को सिद्धांत को सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों से धर्म की बात सुनने के लिए अपना शरीर देने से इनकार किया था, अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। मैंने छोड़ूंगा शरीर का लव, लेकिन शरीर मुझे अवश्य छोड़ देगा। तो आज के श्लोक में है य अध्रुवण आत्मना नाथा। अब दधीचि मुनि जी इतने तपस्वी हैं, उनके शरीर की रक्षा स्वयं नारायण कवच कर रहे थे, और देखिए उनकी विनम्रता, वो देवताओं को क्या कह रहे हैं, हालांकि देवताओं के पास भीख मांगने आए हैं लेकिन बोल रहे नाथा मेरे स्वामी। ये एक उन्नत ऋषि की, एक उन्नत चेतना की ये निशानी है, ये लक्षण है। हालांकि उनसे भीख मांग रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन ऋषि जी की ये विनम्रता देखिए, वो देवताओं को नाथा कहकर पुकार रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हो। बोले यह अध्रुवण आत्मना, ये जो शरीर है ये अस्थाई है, और इसको किसके लिए उपयोग करना चाहिए, एहेत भूत दया, इसको भूत जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनकी दया के लिए इसका उपयोग करना चाहिए।
और यदि कोई अपने शरीर का त्याग यशप ना धर्मम यशापमान, इस यशा यहां लिखा गया है अक्षुण कीर्ति। अक्षुण कीर्ति का अर्थ है कि एटर्नल ग्लोरी, जो इंग्लिश में प्रभुपाद अर्थ करते हैं, सनातन यश, जो धर्म के प्रचार के लिए और सनातन यश के लिए जो इस शरीर का त्याग नहीं कर सकता, जिसके हृदय में ये करुणा नहीं है कि जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनके लिए, उनके कष्ट के निवारण के लिए अपने शरीर का जो त्याग नहीं कर सकता, उसकी स्थिति शोचनीय है, उसको जो अचल जीव है, जड़ प्राणी तक भी उसको धिक्कारते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में करुणा नहीं है, कंपैशन नहीं है, और जो उस करुणा के कारण त्याग नहीं करता अपने शरीर का, वो शोचनीय है, वो धिक्कारा जाता है किसके द्वारा? अचल प्राणियों के द्वारा। अचल प्राणी कौन से हैं? पेड़ पौधे, पर्वत, वो लोग धिक्कारते हैं ऐसे मनुष्यों को कि अगर तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, देखो कितने लोग कष्ट पा रहे हैं और तुम अपने सुख सुविधाओं में क्यों बटोरने में लगे हुए हो। तो ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं, जगाने वाला ये तात्पर्य है हमें कि प्रत्येक, इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में करुणा अवश्य होनी चाहिए। करुणा वास्तव में प्रेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। करुणा हमारे कृष्ण भानामृत का एक सार है। और ये जो करुणा है और इस प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है? सेवा के द्वारा, स्वार्थ रहित सेवा। क्योंकि प्रेम होगा तो करुणा होगी। एक माता बच्चे से बहुत प्रेम करती है और जब बच्चा रो रहा होता है तो माता का हृदय करुणा से पिघल जाता है और फिर वह स्वार्थ रहित होकर उसकी सेवा करती है, और उस सेवा करने में उसको जितने कष्ट आते हैं उतना ही माता का आनंद बढ़ता है। इसी ढंग से भगवान का जीवों के साथ संबंध है और इसी ढंग से एक भक्त के हृदय में अन्य बद्ध जीवों के लिए करुणा है। करुणा प्रेम के कारण हृदय में करुणा है और करुणा से वो उसकी अभिव्यक्ति करते हैं स्वार्थ रहित सेवा करके। और किसी ने मनुष्य देह प्राप्त करके अपने जीवन को इस ढंग से सार्थक नहीं किया कि अन्य बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार है। ये शरीर हम सबको कितना प्रिय है कि नहीं है, बताइए। कोई यहां पर ऐसा बैठा व्यक्ति जिसको अपना ये देह प्रिय ना हो? हालांकि ये देह हमें कितना कष्ट देता है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल है, पेट खराब है, तरह तरह की बीमारियां, छोटे से बच्चे को लेकर वृद्ध व्यक्ति तक। आजकल तो बच्चा पैदा ही होता है बीमारियों के साथ। हमारे एक भक्त थे, उनके एक भतीजा पैदा हुआ, उसके हृदय में छेद और वो स्कॉट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में 70 दिन रहा। 70 दिन बेचारा छोटा सा बच्चा और तरह तरह की पाइपें अंदर घुसी हुई, बुरी हालत जिसे कहते हैं। तो देखिए बचपन से ही बच्चा पैदा होता है उसको जॉन्डिस होता है, उसका किडनी खराब होता है, उसको इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। ये शरीर शुरू से लेकर आखिर तक हमें कष्ट 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 ही देता है, कष्टों की खान है। लेकिन हम लोग फिर भी देह से कितने आसक्त होते हैं, जिम में जाते हैं, अपने शरीर को और स्वस्थ बनाते हैं, अपने आप को आईने में निखारते हैं, मेकअप करते हैं, सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा भी एक काला सा दाग ऊपर लग गया हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, बाल हमारे सफेद हो रहे हैं उसको डाई करते हैं, बूढ़े हो रहे हो तो फेस अपलिफ्ट करते हैं, मेकअप करते हैं, हमेशा अपने आपको युवा दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं और शरीर की मालिश करके इसको तंदुरुस्त रखना चाहते हैं हम। और कोई आए प्रभु जी ये शरीर मुझे दे दो, कैसे हम दे पाएंगे? शरीर तो छोड़ो, कोई हमसे अपना मोबाइल भी मांगने उसको देंगे नहीं, है ना? मोबाइल भी बहुत बड़ी बात है, जो वस्तु हमें थोड़ी सी अच्छी लगती है, हरी मिर्च हमें से कोई छीनने हमारी प्लेट से निकाल दे हमें गुस्सा आ जाएगा। जिस वस्तु से हम आसक्त होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, हम उसको देना नहीं चाहते, वो चाहते हमेशा मेरे पास रहे, ये मेरा ऐश्वर्य मेरे साथ हमेशा रहे, लेकिन वो छोड़ देगा हमें ये शरीर, ये सारे के सारे ऐश्वर्य छोड़ देगा। जीवन दलमल कमल टलमल, कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद के समान हमारा जीवन है, अध्रुवेण, कभी भी समाप्त हो सकता है किसी भी समय। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई बैंक बैलेंस, कोई हमारे रिश्तेदार इसको नहीं बचा सकते, किसी भी समय शरीर समाप्त हो सकता है। जब ये समाप्त होना ही है तदपि अर्थदम, क्यों ना इसको हम अर्थदम मीनिंगफुल बना लें। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इसमें इतनी खासियत है कि इसका एक एक क्षण का उपयोग हम कर सकते हैं कृष्ण के समीप जाने के लिए, कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए। और मनुष्य देह का एकमात्र लक्ष्य यही है।
और अगर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद हम ये प्रयास नहीं कर रहे कि हमारा हृदय द्रवित हो जाए, भक्ति करने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, बहुत कोमल होना चाहिए। हृदय कोमल नहीं होगा तो प्रेम कैसे विकसित होगा? पत्थर किसी से प्रेम कर सकता है, लेकिन यहां बताया गया है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, पर्वत भी पत्थर भी उसको धिक्कारते हैं, अरे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तुम त्याग नहीं कर सकते, केवल अपने लिए जीवन जी रहे हो। पर्वत और वृक्ष उस व्यक्ति को धिक्कारते हैं। पर्वत और वृक्ष की चेतना सबसे ज्यादा निम्न चेतना है, आवृत चेतना है, ढकी हुई चेतना है, और मनुष्य की चेतना सबसे विकसित है। तो पर्वत और पेड़ कहते हैं, अरे भाई हमारी चेतना तो आवृत है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे जीव हो जिनको इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तुम्हारी चेतना इतनी विकसित है, फिर भी हृदय में करुणा नहीं है, फिर भी कोई त्याग की भावना नहीं है, धिक्कार है। इस ढंग से इस श्लोक का मतलब है। और ग्यारहवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा दे रहे हैं और उसमें यही बात आ रही है कि संत पुरुष को पर्वत से सीखना चाहिए कि अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाए। पर्वत बेचारा अचल है और उसकी चेतना आवृत है, फिर भी वो क्या करता है, अपने सारे प्रयास दूसरों की सेवा में लगे रहे। पर्वत से हम देखते हैं नदियां निकल के आती हैं, झरने आते हैं, पर्वत से हमें कितने मिनरल्स पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, और पर्वत कितने लोगों का बोझा उठाता है, और अन्यों के कल्याण को अपने जीवन का एकमात्र अभिप्राय बनाए। इसी तरह वृक्ष का शिष्य बनकर, भगवान किसको बता रहे हैं, उद्धव को, वृक्ष का हमें शिष्य बन जाना चाहिए और उसे स्वयं को अन्यों को समर्पण करना सीखना चाहिए। तृणादपि सुनिश्चयेन तरोरेव सहिष्णुना, वृक्ष की तस्य भी ज्यादा हमें सहनशील होना चाहिए। वृक्ष को अगर हम काट भी देते हैं तो जो वृक्ष की लकड़ी है उसका भी उपयोग होता है, मरने के शरीर त्यागने के बाद भी उस वृक्ष के शरीर का उपयोग है मानव जाति के लिए, तो उसको हमें अपना गुरु मान लेना चाहिए। और पर्वत से भी सीखना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य एकमात्र अभिप्राय होना चाहिए, अपने को दूसरों की सेवा में लगाएं। तो ये वास्तव में करुणा जो कि प्रेम से उत्पन्न होती है, हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु हैं, प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और प्रतीक्षा करते रहते हैं कब ये विमुख जीव मेरे प्रति उन्मुख होगा। इसी ढंग से हम देखते हैं भगवान की कृपा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, करुणाम करुमय करुणा भरीते शनक शनातन वरनीता चरिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल महिते। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राधा रानी जी करुणा भरे, करुणा से भरे हुए हैं, करुणाम करू मुझ पे करुणा करो। शनक सनातन वर्णिता चरित्र, शनक और सनातन इनका गुणगान करते हैं। तो जहां प्रेम है वहां निश्चित रूप से करुणा होगी और जहां प्रेम और करुणा है उसकी अभिव्यक्ति होगी बिल्कुल निस्वार्थ स्वार्थ रहित सेवा से। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का और षड गोस्वामियों का। महाप्रभु कह रहे हैं कि बद जीवों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और महाप्रभु ने संन्यास 24 वर्ष की युवा अवस्था में लिया और महाप्रभु बहुत सुंदर थे और महाप्रभु के बहुत सुंदर सुंदर बाल थे। कटवा में जिस नाई ने महाप्रभु के बाल काटे, बाल काटते काटते बेचारा रो रहा था और महाप्रभु की बहुत ही सुंदर सुशील गुणमय पत्नी थी विष्णुप्रिया, उनकी आयु कितनी थी 16 वर्ष। महाप्रभु की एक विधवा मां थी सच्ची माता, बूढ़ी असहाय विधवा और घर में कोई क्लेश नहीं था, यानी कि सास और बहू की लड़ाई होती थी, विष्णुप्रिया जी महाप्रभु से लड़ाई करती थी, आसपास के पड़ोसी तंग करते थे, पड़ोसियों के साथ मिलकर महाप्रभु क्या करते थे, पूरी पूरी रात संकीर्तन करते थे, निमाई पंडित नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर शुक्लंबर ब्रह्मचारी सब मिलकर शिवा सांगण में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारा अनुकूल वातावरण है। उसके बाद भी महाप्रभु ने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। ये उनकी हृदय की करुणा है। क्यों संन्यास लिया ये उनका बाहरी कारण है, अंतरंग कारण कुछ और है जिसकी चर्चा हम यहां पे नहीं कर सकते। लेकिन बाहरी कारण भी है कि बद्ध जीवों का उद्धार के लिए और युग धर्म की स्थापना के लिए महाप्रभु ने सब कुछ त्याग दिया। वैसे तो घर छोड़ने की प्रवृत्ति आप सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के अवश्य होगी। ये होती है, हमारे पास लोग आ जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी तंग आ गया, दुखी हो गया, ले लीजिए अपने शरण में। एक बारी एक वास्तविक घटना है, श्री संप्रदाय के एक सन्यासी थे, उनके पास एक व्यक्ति गए और बोले कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं। बोले क्या हो गया? बोले अभी फिलहाल ही में मेरी पत्नी की मृत्यु हुई और मेरे आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला, इसलिए मैं इतना वैराग्य, मैं सन्यास लेना चाहता हूं। उस सन्यासी ने बोला मेरी आपको राय है कि अब दोबारा से विवाह कीजिए। बोले क्यों? बोले आप सन्यास के योग्य नहीं है, आपका हृदय बहुत कठोर है, हृदय बहुत कठोर है। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि भक्ति का मतलब ये नहीं है किसी से द्वेष करना, घर में पत्नी से बनती नहीं, सास और बहू की लड़ाई, ये छोड़ दो घर को, बेकार है सब, दुनिया बेकार है, नहीं। ये हृदय को द्रवित करके ही हम भगवान की भक्ति शुरू कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा हृदय को द्रवित ही करना है। तो जिस पत्नी के साथ इतने साल बिताए और उस पत्नी के देहांत के बाद आपको आंसू भी नहीं आए तो आप योग्य नहीं है सन्यास के। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु का अपनी मां के साथ बहुत प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु का विष्णुप्रिया के साथ बहुत प्रेम था, चैतन्य महाप्रभु का अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा लगाव था। आप सोचिए ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में कौन घर त्यागना चाहेगा? कौन? ये पड़ोसियों से लड़ाई हो रही हो, पत्नी से झगड़ा हो रहा हो, घर में क्लेश हो, तब तो व्यक्ति बोलता है चलो छोड़ो। सब जगह प्रेम ही प्रेम है। ऐसा प्रेम था, ऐसा आनंद था कि देवतागण कहते थे वाह, ऐसा आनंद तो देव उच्च लोकों में भी नहीं है। वो नवदीप में सच्ची माता के आंगन में वो गृहस्थी का जीवन बिता रहे थे, लेकिन सब कुछ त्याग दिया किसके लिए? हम सब जीवों को कृष्ण प्रेम देने के लिए। और उनके अनुयायी जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाई गोसाई कर चरण वंदन, जहां हिला विघ्न नाष्ट अभिष्ट पूरण। 6 गोस्वामी सब बड़े उच्च अवस्था पे थे, कुछ मंत्री थे, कुछ जमींदार थे, धनाढ्य परिवारों से थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर क्या बन गए? भूत्वा दीन गणेश कणु को, दीन गणेश को करुणाया कोपी न कंथाश्रितो, भिखारी बन गए, भिखारी भिखारी बन गए, वृंदावन में भिक्षा मांग रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े महलों में रहते थे वहां वृंदावन में एक रात के ज्यादा एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे, जहां इतने सुंदर सुंदर व्यंजन खाते थे वहां सूखी आटा, बस किसी ढंग से सूर्य की रोशनी में पकाकर सूखे आटा खा लेते थे, बताइए। और जहां बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण आते थे वहां केवल कोपिन डालते थे। सनातन गोस्वामी जब आए भागकर जेल से, हाजीपुर से होते हुए आए, उनके जीजा जी श्रीकांत जी ने उनको एक सुंदर सा कंबल दे दिया, दाढ़ी बड़ी हुई थी, सारे मेले कुचले वस्त्र, लेकिन सुंदर सा कंबल डाला हुआ था, तो महाप्रभु ने केवल देखा बस और कुछ नहीं कहा, केवल देखा। सनातन गोस्वामी समझिए महाप्रभु प्रसन्न नहीं है। रास्ते में एक भिखारी को पकड़ा, आपसे एक निवेदन है। बोले क्या? ये फटा हुआ कंबल मुझे दे दो। बोले अरे पागल हो गए आप, नहीं आप ये ले लीजिए, फटा हुआ कंबल मुझे दे दीजिए। सब कुछ त्याग दिया किसके लिए? हम सब बद्धजीवों के उद्धार के लिए। भूत्वा दीन गण, हम लोग दीन गण हैं, उनके रक्षक हैं 6 गोस्वामी। तो वास्तव में आज के श्लोक में बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद हम सबसे अपील कर रहे हैं। प्रभुपाद का हृदय करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज, जो कि आध्यात्मिक जीवन का उच्चतम स्थान है, उसको छोड़कर चले गए कहां पर? बॉवरी स्ट्रीट न्यूयॉर्क, इस संसार का सबसे पतित स्थान। अमेरिका जाने वाले युवा लोग का विचार कुछ और हो सकता है, लेकिन वास्तव में सबसे बेहद सबसे पतित स्थान, जहां पे हमेशा मल मूत्र और उल्टी की गंदी बदबू आती रहती थी, उस स्थान पर श्रील प्रभुपाद गए हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तो प्रभुपाद हम सबसे अपील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है, आप सबको है कि नहीं सुख सुविधा प्राप्त? अच्छा घर है, रहने को कपड़ा है, खाने को दो वक्त का अच्छा सा प्रसाद मिल जाता है, गाड़ी भी है, घर में एयर कंडीशनर भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, बढ़िया मोबाइल फोन भी है, सब सुख सुविधाएं हैं। तो प्रभुपाद जी की अपील क्या है? इस प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है उन्हें चाहिए कि वे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु कृष्ण भावामृत आंदोलन में सम्मिलित हों। सबका ये कर्तव्य है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबको कृष्ण भावामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। आप में से कुछ भक्त कह सकते हैं हम तो हैं ही सम्मिलित, और क्या करें। कुछ लोग कह सकते हैं हम तो लाइफ मेंबर हैं हम तो हैं, लेकिन वास्तव में सम्मिलित होने का क्या अर्थ है, जो कि श्लोक में बताया जा रहा है कि सम्मिलित होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ हम श्रीला प्रभुपाद जी के आंदोलन के लिए, इस कृष्ण भावामृत के प्रचार के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर हूं। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन के वन से निकल रहे थे तो सारे के सारे वन में जो वृक्ष थे वो बलराम जी को छू छू कर प्रणाम कर रहे थे। तो फिर कृष्ण ने इन वृक्षों का गुणगान किया और फिर क्या बोला कि जो वृक्ष हैं हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके लिए संदेश दिया कि प्रत्येक जीव को अपने प्राण, अपनी बुद्धि, अपने धन और अपनी वाणी के द्वारा दूसरों के हित के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। जो भी हमारे पास धन है, जो हमारे पास बुद्धि है, हमारी वाणी, हमारे प्राण, ये दूसरों के हित के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का हम सब जीवों के लिए उपदेश है। तो श्रीला प्रभुपाद हमसे ये अपील कर रहे हैं, और श्रीला प्रभुपाद केवल कह ही नहीं रहे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको करके दिखाया। प्रभुपाद कितनी कठिनाइयों से गिरे। श्रीमद भागवतम के 8वें स्कंध के 7वें अध्याय के 44वें श्लोक में ये बात बताई जाती है। तप्यन्ते लोकतापे न साधवा प्रायशो जना परमराधनाम तद्विधि पुरुषस्य अखिलात्मनः। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। एक महापुरुष के लक्षण क्या है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। भगवान को पूजने की सर्वोच्च विधि क्या है कि दूसरों के कष्टों के निवारण के लिए हम कष्ट सहन करें स्वेच्छा से। शिला प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। हमारे आचार्य देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामी, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को बोला गया कि आप हरिनाम का प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, खंड खंड भी कर देंगे, तब भी मैं हरिनाम के प्रचार को नहीं छोड़ूंगा। जीसस क्राइस्ट, वासुदेव दत्त, जिन्होंने क्या बोला, इस संसार में जितने जीव हैं उन सबके पापों का जो परिणाम है मुझे दे दो, लेकिन सब जीवों का उद्धार कर दो। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे। किसी के अंदर हिम्मत है ये प्रार्थना करने की? किसके अंदर हिम्मत है कि सारे जीव, सब जीव जितने भी संसार में किसी भी योनि में है, जो कि बेचारे पाप के कारण, पूर्व जन्मों के पापों के कारण कष्ट भोग रहे हैं, उन सबके कष्ट मुझे दे दो, लेकिन इनका उद्धार कर दो। कितनी करुणा होगी, कितना विशाल हृदय होगा। ये असली महात्मा है, ये महापुरुष है, महाजनों ये गथा सपन था। हमें प्रयास करना है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। शिला प्रभुपाद की बात, शिला प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं कितना कष्ट उठाकर और अभी भी उठा रहे हैं, किस ढंग से वो पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भावामृत का प्रचार कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जोहू बॉम्बे में भेजा, वहां जाके आप मंदिर बनाइए। प्रभुपाद जी के शिष्य कहते थे कहां आपने जंगल में ये जमीन ले ली है, कौन आएगा। शिष्यगण आपस में कहते थे क्या बूढ़े हो गए हैं प्रभुपाद, क्या कहां पे इतने जंगल में हमें फंसा दिया। और वहां पे बेचारे टेंट लगाकर कंस्ट्रक्शन करते थे, वहां बड़े मोटे मोटे चूहे, नहाने को टॉयलेट नहीं होता था, ओपन नहाते थे, ओपन शौच करने आते थे, और वहां पे पुरुष स्त्रियां सभी वैष्णव वैष्णवी रह रहे हैं। जब प्रभुपाद आए तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा प्रभुपाद कोई टॉयलेट नहीं है यहां पे, बड़े बड़े चूहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, सब भक्तों का पेट खराब है। आप सोचिए जितने भी विदेशी भक्त आते थे उनका पेट खराब हो जाता था, क्योंकि यहां का पानी, यहां की मिर्च मसाले उनको सूट ही नहीं करता था। ऐसी अवस्था में बोले कंस्ट्रक्शन करो, और सारे लोग उनको ठगते थे। कितनी विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे श्री गोस्वामी जी कुंठित, कैसे करें प्रभुपाद। प्रभुपाद ने एक ही उत्तर दिया, डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड, कि आप अपने आप को शुद्ध करना नहीं चाहते। अगर शुद्ध होना चाहते हो तो इन सब कष्टों को सहो। उन लोगों ने इन कष्टों को सहा और अभी तक सह रहे हैं। लेकिन जितने प्रभुपाद के शिष्य हैं, हिरोनाथ गोपालकृष्ण स्वामी महाराज, हिरोनाथ राधानाथ स्वामी महाराज, हिरोनाथ जयप्रदा का स्वामी महाराज, इनका शरीर का स्वास्थ्य बहुत खराब है। हिरोनाथ जयप्रदा का स्वामी महाराज व्हीलचेयर में बैठ के भी पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और कैसे लोगों का उद्धार कर रहे हैं, शिष्य ग्रहण कर रहे हैं करुणावश, प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे पास ज्वलंत उदाहरण है। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य ने जब रशिया में प्रचार किया, उसके प्रमाण क्या क्या कठिनाई सही, उसके पर एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, कई भक्तों ने पढ़ा, उसमें से घटनाएं हमें सुनाई, तो बिल्कुल रोमांचकारी ऐसी घटना है कि आप आपके आप रोए बिना रह नहीं पाएंगे, आपका हृदय द्रवित, कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी द्रवित हो जाएगा। वो लोग निकलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनको मालूम था कि अधिकतर चांसेस ये है कि हम वापिस नहीं आएंगे, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी और जेल में डाल के तरह तरह की यातनाएं देंगी। पुलिस खाली ये जानना चाहती थी कि आपके पास ये पुस्तकें कहां से आ रही है, वो नहीं बताते थे, कर लो जितनी पिटाई कर रही है, जो कर सकते कर लो, और इतनी भीषण यातनाएं देते थे वो अपना मुंह नहीं खोलते थे, और कई दिनों के रहने के बाद फिर उनको छोड़ देते थे, फिर वापस मंदिर में आके अगले दिन फिर बुक डिस्ट्रिक्शन में चले जाते थे। आप सोचिए, हमें कोई बोले खबर दा जो राधा राधिकार मन मंदिर में जाएगा पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, कितने वक्त आएंगे यहां पे, किसी ने कोई गया यहां पे उसको पकड़ के पुलिस ऐसी यातनाएं देगी, कोई आना चाहेगा कोई भी नहीं आएगा, घर में बैठ के आराम से 16 माला कर लो भैया, 64 माला कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या है भाव होने चाहिए, भगवान जानते हैं क्या हो रहा है, कैसे कर सकते, प्रैक्टिकल होना चाहिए थोड़ा सा। जाते थे और ऋषिकेश महाराज जी को एक बार उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, जो कि उनके किंग पिन थे, कहने को लगी वही सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे थे। भक्तों ने क्या सोचा, उनका उत्साह गिर गया, फिर उन्होंने सोचा कि ये उन्होंने महाराज को पकड़ लिया है और अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो वो समझ जाएंगे यही वो करता है, यही वो सब कुछ करवाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ा देना चाहिए ताकि उनको मालूम चले कि इनको पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई और होगा। ऐसे कष्ट उन्होंने और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, और जब डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और जो केजीबी के व्यक्ति आते थे वो वेश बदल के आते थे तो उनको मालूम नहीं होता था ये पुलिस का व्यक्ति है वास्तव में इंटरेस्टेड कस्टमर है, कितना रिस्क होता होगा, वो इंटरेस्टेड कस्टमर भी है, बोला केजीबी पकड़ के ले जाते थे फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं। ये प्रभुपाद के ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, पोते हैं हमारी जनरेशन के भक्त। तो जितना हम इस कृष्ण भक्ति में अगर आए हैं, जब तक हम इस त्याग की भावना को अनुकूल नहीं करेंगे, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपने शिला भक्ति सांसद ठाकुर महाराज बताते हैं कि सेवा की परिभाषा ही क्या है, सेवा की परिभाषा ही यही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी भी तरह के कष्ट को सहना और अपने सुख की रंच मात्र भी आशा ना रखना, वो है सेवा। जिस सेवा में हम अपने सुख की आशा रख रहे हैं वो सेवा हमें दुख देती है, वो सेवा सेवा रहती नहीं वास्तव में। इस संसार में अपने सुख की अभिलाषा रखना दुखों का कारण है। हमेशा हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को और भक्तों को और गुरु को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी तपस्या करने को तैयार हों, तत्पर हों, कुछ भी कष्ट उठाने को हम तैयार हों। तो बहुत से उदाहरण हमें शास्त्रों में मिल जाते हैं और बहुत से उदाहरण हम देख भी सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, हम देख हो सकता है ये सब सोच रहे हों कि ये सब तो बहुत महान महान आत्माएं हैं, हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट, प्रभुपाद, प्रभुपाद के शिष्य भी उनके नित्य संगी हैं, हम लोग तो बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं, हम लोग कहां इसको सब कुछ अपने शरीर को त्यागने को तैयार हो जाए, अपने हृदय में हम कैसे करुणा को विकसित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें से कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं, किसी को लगता है ऐसा, किसी को लगता है, नहीं लगता। तो फिर कैसे हम अपने अंदर ये सेवा की भावना बिल्कुल स्वार्थरित हम कैसे हो सकते हैं। हम लोग इतने बुरा मत माने, इतना हमारे अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है, हर वस्तु के पीछे हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हर कार्य के पीछे हम देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे क्या लाभ होने वाला है। और श्रीला रामानुचार्य अपने भगवद्गीता की कॉमेंट्री में बताते हैं कि जब तक ये फ्रूटी मेंटेलिटी है, अपने कार्यों के फल को भोगने की इच्छा है, जब तक ये इच्छा बनी रहेगी तब तक हमारे हृदय में ना तो त्याग उत्पन्न होगा, ना करुणा उत्पन्न होगी, ना प्रेम उत्पन्न होगा, बल्कि हमारा हृदय कठोर होता जाएगा और इतना कठोर हो जाएगा कि पत्थर भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यहां पे लिखा गया है कि पत्थर और पेड़ भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, धिक्कारेंगे, अरे धिक्कार है, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कठोर हो। जितना हम अपने कार्यों को भोगने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब हम कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा हूं, तो जीतने का तो सवाल उठता ही नहीं है, दुख ही दुख है। इसीलिए इस संसार का जो स्थाई भाव वो क्या है, कुंठा, निराशा। निराशा ही संसार का, इस जगत का स्थाई भाव है, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान से स्पृधा करने की, भगवान से कॉम्पीट करने की, तो कहां जीतने का कोई सवाल ही नहीं, उत्पन्न नहीं होता। तो ये सब जो कंफ्यूजन है, जो हमारी दुर्गति है, ये वास्तव में हमारी अज्ञानता के कारण है। हम लोग कृष्ण प्रेम तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तक हमारा अभी संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं है। हम इस संसार के जड़ वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, इस संसार की अस्थाई वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु से हम संबंध जोड़ना चाहते हैं, केवल कृष्ण को छोड़कर। और इन संबंधों से, क्योंकि ये संबंध सनातन नहीं है, इन संबंधों से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो सनातन नहीं होगा। तो इस संबंध ज्ञान को सामना बहुत जरूरी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, से संबंध नहीं जा वृथा जन्म गेलेता, सही पशु बड़ा दुराचार। जो इस संबंध को नहीं जानता उसका जन्म बेकार गया, सही पशु बड़ा दुराचार। उसकी तुलना नरोत्तम दास ठाकुर जी कर रहे हैं कि दुराचारी पशु के समान है, पशु ही नहीं दुराचारी पशु है। तो ये संबंध ज्ञान जाना अति आवश्यक है कि मेरा इस भौतिक जगत से क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है जीवात्मा का इस भौतिक जगत से, क्या संबंध है, क्या संबंध है हमारा, क्या संबंध है, है कुछ संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है। असंगो ही मयम पुरुष, कोई संबंध नहीं है। पानी के अंदर पेट्रोल डाल देंगे कभी मिक्स नहीं होगा। भौतिक जगत में आत्मा आगे कोई मिक्स हो ही नहीं सकती, यहां घुल मिल सकते नहीं। हम सोचते हैं यहां पे घुल मिल कर रहेंगे संभव नहीं है, जितना मर्जी प्रयास कर ले नहीं है। इस संसार में हमें कहीं भी सुख नहीं मिल सकता, लेकिन हम संसार की हर वस्तु को भोगना चाहते हैं। इतना हमारे अंदर प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, इतना रजोगुण है, हम सब लोगों को प्रयोग करते हैं जड़ वस्तु की प्राप्ति के लिए। बेटा अपने बाप का उपयोग करता है उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, पति पत्नी का उपयोग करती है, पत्नी पति का शोषण करता है, दोनों एक दूसरे का शोषण करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यहां तक कि हम भगवान का भी उपयोग करते हैं स्वयं भगवान बनने के लिए। भगवान के पास आकर यही तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा बिजनेस ठीक करा दो, मेरी लॉटरी निकाल दो, क्या करूं मैं भोक्ता बन जाऊं, एक आप भोक्ता मैं, दूसरा भोक्ता मैं। उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भगवान बन जाऊं। आप देखिए जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं किसी ना किसी ढंग से मैं भोक्ता बन जाऊं। इस सब किस लिए कि हमें संबंध ज्ञान मालूम नहीं है, इस संसार से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं कि भक्त कुछ भी नहीं चाहता, ना इस संसार में सुख चाहता है, ना ऊंचे लोगों का सुख चाहता है, और यहां तक कि वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, भगवत धाम की प्राप्ति भी नहीं चाहता। वो अपने आप को क्यों नहीं चाहता, कोई बता सकता है, भक्त मुक्ति क्यों नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझता। वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि मैं मुक्त हो सकता हूं। वो समझता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि मुझे तो निम्न योनि में कहीं रसातल में होना चाहिए था, और मैं कह रहा हूं मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं कुछ मुक्ति नहीं चाहिए, और वैकुंठ धाम तो मैं जा ही नहीं सकता। हालांकि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण प्राप्त करते हैं मैं सारे पापों से उसको मुक्त कर देता हूं। कहते हैं हां इस जन्म में भक्ति कर रहा हूं ना, पिछले जन्म में मैंने कितने पाप किए थे, संभव ही नहीं है। इसलिए वो तो यही प्रार्थना करता है, चाहे मुझे कीड़ा भी बना दो लेकिन कहां लाना, किसी वैष्णव के घर में, ताकि मेरी सेवा ना छूटे, मैं महाप्रसाद पाता रहा हूं, मैं हमेशा सेवा में लगा रहा हूं। भक्ति केवल यही अभिलाषा है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, जो भक्त इस तरह से स्वार्थ रहित होते हैं उनके ऊपर मैं विशेष अनुकंपा करता हूं, और इसी जीवन में रहते हुए उनको उच्च लोगों का और वैकुंठ लोगों का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। जो भक्त लोग पूर्ण रूप से स्वार्थित होते हैं इसी जीवन में वो वैकुंठ लोगों का सुख प्राप्त कर लेते हैं, इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त का शरीर त्यागना पड़े या शरीर रखे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके पास पहले से ही वैकुंठों का ऐश्वर्य है। और जो वैकुंठ का ऐश्वर्य है, क्योंकि जो वैकुंठ का ऐश्वर्य प्राप्त होता है कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने से, तो कोई हानि नहीं है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। तो हमें इस संबंध ज्ञान को जानना पड़ेगा, और इस मनुष्य शरीर में जितने भी हमें शक्ति प्राप्त है वो हमें कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने में लगानी पड़ेगी। तो अंत के 5-10 मिनट हम ये चर्चा करेंगे कि हम अपने हृदय में करुणा कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे हम पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद में वर्णन आता है तात्पर्य में कि अगर कोई शिष्य प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करता है तो उसको संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है, उसके मन में जो प्रदूषण है वो दूर होता है, और फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व को देख सकता है, और फिर उसके हृदय में स्वार्थ रहित प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो अगर हमने अपने हृदय में करुणा विकसित करनी है तो हमें गुरु के श्रीला प्रभुपाद जी के करुणा के एक उनका एक करुणा का एक हमें उपकरण बनना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा, और गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारे मन में जो प्रदूषण है वह दूर होगा, और फिर हम क्या कर पाएंगे, सही दृष्टि से इस विश्व को देख पाएंगे और प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, और इस ढंग से हम स्वार्थ रहित हो सकते हैं। ये पहला कार्य है। दूसरा, हम लोग करुणा दिखाते हैं, पशुओं पे करुणा दिखाते हैं, वृक्षों पे करुणा दिखाते हैं, लेकिन जो वैष्णव हैं उनके प्रति हम करुणा में व्यवहार नहीं करते। हम लोग कई बार आपस में व्यवहार में इतने इम्पर्सनल हो जाते हैं, हमारी जो सिद्धांत है कितनी पर्सनल है, पूरा का पूरा निर्विशेषवाद का खंडन किया प्रभुपाद ने, और हम बहुत प्रत्येक वस्तु को विशेष सम्मान और विशेष प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो डीलिंग्स हैं भक्तों के बीच में बहुत ही इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल डीलिंग से हमारा हृदय और कठोर रहता है। तो हम क्या प्रयास कर सकते हैं, भक्तों के साथ बहुत पर्सनल डीलिंग करें, भक्तों को पर्सनल सेवा करने का प्रयास करें, इससे हमारा हृदय द्रवित होगा और हम सेल्फलेस होना शुरू होंगे। अन्यथा हम हर परिस्थिति में केवल अपने ही बारे में हम सोचते रहते हैं। तीसरा, जब हम कोई सेवा करते हैं, सेवा की हमें सफलता प्राप्त होती है, तो कभी भी अपने आप को इस सफलता का कारण ना माने। मां कर्मफल हेतु भो, इसको याद रखे, मैं इसका कारण नहीं हूं, कदाचित नहीं हूं, क्योंकि हो सकता है मैं इंद्रियों को वश में कर लूं, बहुत फास्टिंग कर लूं, हो सकता है मैं मन को भी वश में कर लूं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो सुख हमें इस भौतिक में प्राप्त करते हैं वो अपने ईगो को, अपने अहंकार को तुष्ट करके। तो फिर जब मैं उस सफलता को भोगना शुरू करूंगा और सफलता का श्रेय अपने ऊपर लूंगा तो मेरी ईगो संतुष्ट होगी, अहंकार, तो वो एक कार्य सेवा करने का कारण बन जाता है, भगवान की प्रसन्नता नहीं। बोला गया है कि जो अहंकार के तुष्टि से जीव को, बद जीव को सुख तथाकथित सुख प्राप्त होता है, वो मैथुन के सुख से भी, तथाकथित मैथुन के सुख से भी बहुत ऊपर है। इसलिए जब हम अपनी मैथुन की वासनाओं को रोकते हैं तो यश की इच्छा और प्रबल हो जाती है। तो कब हमें कोई कोई यश गुणगान भी करता है तो हमें क्या करना चाहिए, पास ऑन कर देना चाहिए तुरंत तुरंत तुरंत। भगवान शिव ने जहर पिया और वो कहलाए नीलकंठ, उनके देह में जो नीलकंठ ये जो निशान है वो उनके करुणा का आभूषण है। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान शिव ने जहर पी के थूक क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं थूका, इसलिए थू नहीं थूका क्योंकि उनके जीवा पे हमेशा कृष्ण का नाम रहता है। यह भक्तिनोद ठाकुर जी का कहना है। बोले थूकने तो पी जाते, पिया इसलिए क्योंकि हृदय में भी कृष्ण है। तो ना वो थूक पाए ना वो पी पाए,
लेकिन हमारे लिए यश को सुनना जहर के समान है और हम शिव की तरह यहां पे कंठ में रख भी नहीं सकते कि अंदर नहीं जाने देंगे तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, तुरंत तुरंत। एक बार इस में सचिनंद स्वामी महाराज आए, सचिनंद स्वामी महाराज अपनी करुणा से निरंतर मेरी प्रशंसा किए जा रहे थे और मुझे बहुत आनंद आ रहा था। जब कोई हमारी प्रशंसा करता तो हमें मीठी मीठी गुदगुदी होती है, नहीं ऐसा नहीं प्रभु, मैं किस अंदर से बहुत अच्छा लग रहा होता है, लड्डू फूट रहे होते हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा था। महाराज समझ गए, बोले एक, उन्होंने बोला एक वैष्णव है, उन्होंने हमें बताया कि आप मेरा गुणगान कर रहे हैं, ये गुणगान मेरे लिए जहर के समान है, अगर मैं इसको पी जाऊंगा तो मेरा आध्यात्मिक जीवन फिनिश। तो बोला ट्राई इट फॉर दैट, डोंट थिंक कि मैं आपका गुणगान कर रहा हूं। तो क्या करना चाहिए, तुरंत अपने गुरु और प्रभुपाद जी को ट्रांसफर कर दो तुरंत। मतलब थोड़ा सा भी रख लू, पोटेशियम साइनाइड की एक बूंद भी रखेंगे तो हम फिनिश। थोड़ा सा भी गुणगान अपने पास रख लिया, नहीं मेरे भी तो कुछ एफर्ट्स थे, कितनी मेहनत की, रात भर जागा, कितना सुंदर श्रृंगार करता हूं, कितना सुंदर प्रवचन देता हूं, कितना सुंदर कीर्तन करता हूं, लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, कोई आप लोग झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब वैष्णव है भाई, सच्चा सच बोलते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास है ही, और फिर ठाकुर जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं। ये बहुत, इससे क्या होगा, हमारे हृदय में करुणा विकसित नहीं होगी, हम पूर्ण रूप से स्वार्थित नहीं हो सकते। तो जो हमें गुणगान प्राप्त होते हैं हम उसको स्थानांतरित कर दें, और पांचवा कि हम अपने हृदय में करुणा विकसित कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, सब भक्तों के लिए हम प्रार्थना करें, सब जीवों के लिए प्रार्थना करें। इसमें क्या जाते हैं बताइए, जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हमारा हृदय विशाल होगा, और हम जानते हैं कई भक्त दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं का परिणाम प्राप्त भी होता है, हमें मालूम भी नहीं होगा कि हमारे लिए कौन कौन से भक्त कैसी कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, कहां कहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा गुण है भक्तों का कि हम सब भक्तों के लिए मिलकर प्रार्थना करें, जहां कहीं भी जाएं, तीर्थ स्थान में जाएं, राधिका रमन कृष्ण बलराम के दर्शन करें, तो हम भक्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान निश्चित रूप से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं अगर हम शुद्ध भाव से करने का प्रयास करें। और छठा, हम सबको अकिंचन बनने का प्रयास करना चाहिए। अकिंचन बनने का अर्थ है कि जो कुछ भी हमारे पास धन है, जो कुछ भी हमारे पास बुद्धि है, जो कुछ भी हमारे पास योग्यता है, वो सबको हमें गुरु और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कुछ छिपा के नहीं रखना चाहिए। सरकार से छुपाया हुआ धन क्या कहलाता है, काला धन, ब्लैक मनी। वास्तव में सारा का सारा धन काला धन है, क्योंकि काले व्यक्ति कृष्ण का है, श्याम सुंदर कृष्ण का सब कुछ है, तो संसार में सब कुछ काला धन है, हम इसको जबरदस्ती व्हाइट ना बना दें, सब कुछ श्याम सुंदर कृष्ण को समर्पित कर दें, गुरु को माध्यम बनाकर, सर्वस्व गुरुवे ददायत, सब कुछ देना चाहिए ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। भक्ति श्याम महाराज कहते हैं कि शतवित नहीं होना चाहिए, वित्त के मामले में धोखा नहीं देना चाहिए, बहुत बड़े सेठ हैं लेकिन बिल्कुल वैरागी का जीवन बिता रहे हैं, षट गोस्वामियों की तरह कोपिन डाल के वृंदावन में, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो वो बैंक बैलेंस क्यों रखा हुआ है, उसको भी कुछ नहीं करो। सब कुछ हमें देना चाहिए, जो कुछ भी है, जितना हम भगवान के लिए अपना सब कुछ ऐश्वर्य करेंगे, भगवान तो बहुत कृतज्ञ हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए मेरा क्या होगा, नहीं दे रहे तो पूछा कि तुम्हारा क्या होगा, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यही संसार में पड़े रहेंगे। सब कुछ देकर नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी कहते हैं अकिंचन भक्तों की प्रॉपर्टी है भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण प्रॉपर्टी बन जाएंगे अकिंचन भक्तों की, बताइए षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण अगर हमारी संपत्ति बन जाते हैं। तो इसलिए इन छह तरीकों से ये हमने ऐसे प्रयास किया, सब शास्त्रों से देखकर, ऐसा नहीं है कि लिखे हुए कहीं छह तरीके, लेकिन अगर इनको अपने जीवन में उतारें तो हम अपने हृदय में करुणा विकसित कर सकते हैं, हम स्वार्थ रहित हो सकते हैं, और ये जीवन हमें स्वार्थरित रहने के लिए मिला है। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वो कृपण कहलाते हैं, और कृपण को भगवान ने बोला वो मूर्ख है, एक नंबर के मूर्ख हैं, क्योंकि सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए जब तक है, जब तक हमारे पास सब कुछ है, क्यों ना हम उसको भगवान की सेवा में लगा दें। अगर कोई व्यक्ति हमसे छीन ले तो अच्छा लगता है, हमें दुख होता है, और किसी व्यक्ति को प्रेमवश हम उपहार दें तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुसलमानों में, इस्लाम में लोग रमजान बताऊं क्यों रखते हैं,
बताया गया कुरान में रमजान इसलिए रखना चाहिए ताकि हृदय में करुणा विकसित कर सके। क्यों? क्योंकि वो भूखे लोगों के दर्द को समझ सके कि भूखे व्यक्ति के अंदर क्या दर्द होता है। वैसे किसी भूखे को हम दान दे दें तो हमें नाम मिलेगा, यश मिलेगा, लेकिन भूखे व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए प्रेम से अगर हम सोच दान देंगे तो वो प्रेम का लक्षण है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे को कृष्ण की कृपा से योग्यता प्राप्त हुई है, सब कुछ हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, गुरु की सेवा में लगाना चाहिए, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, और इसके मार्ग में हमें जो कठिनाइयां भी हों उसको सहना भी, कोई उसमें हमें जितना हम सहन करेंगे उतना हमें सुख की प्राप्ति होगी। इस विषय पे बहुत कुछ है कहने को, बहुत सी घटनाएं का अब स्मरण हो रहा है, लेकिन हम यहीं पे विराम देंगे। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? हाँ, हाँ, तो प्रभु जी का अच्छा प्रश्न है कि वो बता रहे हैं कि पिछले वर्ष में उन्होंने बताया कि किसी को कुछ देने में कठिनाई है तो उसे मांगना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ददीशी मुनि को वास्तव में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। ददीशी मुनि का पिछले अपने अध्याय में पढ़ा होगा, इससे पहले भी इंद्र उनका सर काट चुके हैं, एक बार पढ़ा आपने ना, उनको अश्व सर बताया जाता है, अश्व सर, क्योंकि अश्विनी कुमार उनके पास आए थे। अश्विनी कुमार ने बोला कि हमें ब्रह्म विद्या दो, और तभी इंद्र आ गए, बोले इनको मत देना ब्रह्म विद्या, तुम्हारा सर काट दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, अपना सर रिप्लेस कर दिया घोड़े के सिर के साथ, फिर विद्या दे दी, फिर वो आए इंद्र, उन्होंने सर काट दिया, और फिर अश्विनी कुमार ने दोबारा से सर लगा दिया। तो ददीशी मुनि जो है ऋषि हैं, बिल्कुल स्वार्थ रहित हैं, वो तो केवल उनको टेस्ट कर रहे थे देवताओं से कि मैं ऐसे आपसे कुछ सुनना चाहता हूं धर्म के विषय में, और फिर बाद में उनको अपना नाथ कह रहे हैं, अपना स्वामी कह रहे हैं।
पूरे पास्ट में देखे जो भगवान है, अपने एक प्योर डिवोटी से दो प्योर डिवोटीज को एक तरह से मतलब मरवा रहे हैं इंद्र के लिए, जिनका कैरेक्टर अगर आप देखें तो।
इनका अच्छा प्रश्न है कि भगवान अपने दो शुद्ध भक्तों की हत्या करवा रहे हैं, ददीशी मुनि से आत्महत्या करवाई और वृद्धासुर को भी मरवा दिया, और इंद्र को शह दिए जा रहे हैं, और इंद्र बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं फिर शह देते हैं। ये क्या चक्कर गया है, भगवान कैसे व्यक्ति है? कल मुल्क शो यही चर्चा कर रहे थे, अच्छा प्रश्न है। तो हमने भी सोचा कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्तों के लिए जीना और मरना एक समान है, लेकिन जो कृपण है उसके लिए जीना बहुत जरूरी है। तो इंद्र कृपण है, वृत्तासुर ब्राह्मण है, ददीची ब्राह्मण है, वो शरीर से आ सकती है, तो ठीक है लो, भगवान ने उनको हिंट भी दे दिया, तुम मूर्ख हो, पता नहीं क्या मांगा तुमने मुझसे। अगर कोई अच्छी अच्छी प्रार्थना करके भगवान को पसंद नहीं कर सकता, अच्छी अच्छी प्रार्थना करें लेकिन अंदर उद्देश्य कुछ और है। इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हमने पढ़ी पिछले अध्याय में, कृष्ण भगवान इंप्रेस नहीं हुए, बोले इसी से काम चलाओ, तुम इसी शरीर में रहना चाहते रहो, मृतासुर को साथ वापिस आ जाओ, आराम से आनंद करेंगे इस संसार में, क्या वापिस आओ चलो। सो दैट वे कोई भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, कोई जीवित है या मृत अवस्था, उन्होंने सेवा चलती रहनी है। यस श्याम सुंदर, श्याम कृष्ण है। परिभाषा ही बता सकते हैं क्या आपको, थियोरेटिकल परिभाषा भी बता सकते हैं। वैराग्य का वास्तव में बताया जाता है ज्ञान की परिकाष्ठा है, जब ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वैराग्य आएगा। और वैराग्य का हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पर ये देख सकते हैं, शरीर और मन की आवश्यकताओं से ऊपर उठना, शरीर और मन की आवश्यकताओं से ऊपर उठे। और भक्त लोग बताते हैं कि वैराग्य का अर्थ है ये तभी हो पाएगा जब विशेष राग हो, जितना हम कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे, भक्तों से आसक्त होंगे, उतना इन भौतिक वस्तुओं से हम अनासक्त हो जाएंगे। हाँ, नाम करना है। हाँ, भक्तों के डेली में हम पर्सनल बिहेवियर करें, है ना, कई बार हम भक्तों को कमोडिटी के रूप में यूज करते हैं, मैन पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट कराने के लिए, अपना कुछ भी, अपना कार्य निकालने के लिए, तो वो ना करके हम भक्तों के, ऐसा नहीं है कि हम तो आत्मा के स्तर पे ऑपरेट करते हैं तो भक्तों के शरीर और भक्तों के मन की दुविधा को कुछ समझे ही ना, ये सब माया है, शरीर अस्थाई है, मन अस्थाई है, आत्मा के बारे में क्या फर्क पड़ता है, घर में कोई मृत्यु क्या हो गया फिर है, अशोचान वशोचस्तम प्रज्ञावादन शिभाष, सब तो जाना ही है, क्या फालतू की बात कर रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई, है कुछ समझ नहीं आया अभी तक गीता, तो इतने कठोर से बात करना,
हर एक के सेंटीमेंट्स को बिल्कुल ओवरलुक कर देना, तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। वी शुड बी वेरी पर्सनल, और हमें जाना चाहिए पर्सनल का अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से इस भक्त के लिए कौन सी सेवा इसको भक्ति में आगे बढ़ाएगी, और किस सेवा के करके इस भक्त के हृदय में हो सकता है अनर्थ उत्पन्न हो जाए, अभी नहीं देना। तो बहुत पर्सनल, प्रभुपाद जी प्रत्येक भक्त के प्रति बहुत पर्सनल होते हैं, प्रत्येक डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। किसी को एक ही बात पे डांट सुनाई जा रही है, किसी को एक ही बात के लिए प्रशंसा की जा रही है, पर्सनल। हर एक के कंडीशनिंग अलग अलग है, किसी के लिए क्या अच्छा है वही किसी के लिए गलत हो सकता है ना। बोले कृष्ण
भक्तों के मन में डाउट आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो विष्णुप्रिया देवी या सती माता को बहुत दुख हुआ, ऐसे करके ऐसे ही अगर कोई अपना घर छोड़ता है तो नेचुरली पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, ऐसे करके, तो ये कौन सी दया है? सो पीपल हैव दिस कि इस प्रकार से वो उन जीवों के बड़ा दया नहीं है, दे मे बी इन डिफिकल्टी जिस पर विधवा माँ को चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा, या और भी ऐसे एग्जाम्पल कई सारे शास्त्रों में आते हैं। सो हाउ टू जस्टिफाई दिस एंड गिव दिस अंडरस्टैंड।
बड़ा मार्मिक प्रश्न है इनका, बड़ा हृदय से क्लोज प्रश्न है, क्योंकि घर छोड़ के आया, माँ रो रो रही है, पिताजी बीमार हैं, मृत्युशैया पे भी हो सकते हैं, और बच्चा छोड़ के आ गया एकदम, कैसी दया है, कठोर हृदय आपका। तो वास्तव में अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमें ये देखना पड़ चाहिए कि जो भक्त है उसको वास्तव में करुणा होनी चाहिए, वास्तव में प्रेम होना चाहिए। उनकी स्थिति को देखकर जब वो रो रहे हैं तो उसका हृदय पिघलना चाहिए, लेकिन तपस्या क्या है कि एक हायर कॉज के लिए, यहां पे मैं चार जीवों के साथ प्रेम करूंगा और यहीं पे सीमित रह जाऊंगा, अगर वहां मैं कृष्ण से प्रेम करना सीखूंगा तो मैं कितने ही जीवों से प्रेम कर सकता हूं, और फिर अगर मैं वास्तव में शुद्ध भक्त बन गया तो इनको तो वैकुंठ लोक प्राप्त हो ही जाएगा, जो मेरे माता पिता हैं, अगर मैं शुद्ध भक्त बन गया तो गारंटेड है। केवल माता पिता ही नहीं, उसके जीजा साले चाचा ताए मासा मौसी कजन दूर दूर के कजन सबका उद्धार हो जाता है। ये ही नहीं, उसके घर में जो मेड सर्वेंट है, बर्तन मांजने आती है, सफाई करने आती है, जो कुत्ते बिल्ली भी पाल रखे हैं, चूहा भी जिस घर में रहता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कोई आप ऐसा नहीं कि ऐसी मार्केटिंग को लेकर बात, हम ऐसा नहीं कर रहे, ये महाप्रभु का कहना है। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद थे कौन, अमोघा, महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे, उनको हैजे का रोग हो गया, बिल्कुल मृत्युपरायण हो गए, मरने लगे, महाप्रभु इसलिए गए, वो तो द्वेष करता था उनसे, नहीं ये मेरे भक्त का दामाद है। उनकी पत्नी ने सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, यहां पे इतनी कोई माता जी है कोई प्रार्थना करे कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, भाई मेरी बेटी विधवा हो जाए, वो भगवान से ये प्रार्थना करी चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु कुछ अलग प्लान है। अमोघा के हृदय में हाथ रखा तो क्यों इतनी ईर्ष्या करते हो, तुरंत कृष्ण प्रेम संचारित हुआ, स्वस्थ हो गया। बोले क्यों दया की, क्योंकि तुम्हारा दामाद है इसलिए। तो ये विजन होना चाहिए, ये बिल्कुल दृढ़ता होनी चाहिए। अगर अपने माता पिता से हम प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम का अर्थ है कि हम उनको भगवत धाम ले जाएं, इसी जगत में सड़ने ना दें, मम्मी मम्मी करके वो बेटा बेटा पुचकारते रहेंगे एक दूसरे को, तो क्या है कि मैं भी यही रहूंगा वो भी यही रहेंगे, है ना। हमारे असली माता पिता तो कृष्ण है ना, तो उनका भी ये भ्रम दूर होगा, असली सच्चाई में जाएंगे। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनका हृदय पिघलना नहीं चाहिए, हृदय जरूर जुड़ित होना चाहिए उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर, लेकिन हमें जाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक दिन धीरे 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 वो इस बात को समझ जाएंगे, जहां सच्चाई है जहां सिंसियरिटी है परमात्मा रेसिप्रोकेट करते हैं, और हृदय को उनको भी शक्तिशाली बनाएंगे, और उनका भी हृदय बड़ा होगा, वो समझ जाएंगे। कितने ही लोगों की ये जीवन गाथा है, सबके जीवन में हो चुका है। नहीं तुम्हारे प्रश्न, अंतिम प्रश्न पूछा,
तात्पर्य में जो है दो चीजें बोली गई और आपका प्रवचन भी, प्रभात ने बोला है कि सन्यासी सिविल सुसाइड, और साथ ही साथ बता रहे हैं इट इज कंपल्सरी सन्यासी कंपल्सरी, दो फीचर बताए। तीसरा एग्जाम्पल महाप्रभु का दिया, जो कि बहुत मतलब कि सब कुछ अच्छा था और तब भी ही सैक्रिफाइस अच्छा था तो वो सैक्रिफाइस करने के लिए था. तो और कई और जगहों में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर घर में जो है इस प्रकार का सिचुएशन है कि घर में कोई भक्त नहीं है, फेवरेबल नहीं है, चीजें नहीं है, ऐसे घर में रुकना भी नहीं चाहिए. सो देन इज लाइक वॉट इज इट लाइक इज इट नॉट दैट कि चाहे फेवरेबल है चाहे फेवरेबल नहीं है.
हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर व्याख्या नहीं कर सका कि बहुत से टॉपिक्स थे. अच्छा प्रश्न प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रत्येक फर्स्ट क्लास व्यक्ति को, थर्ड क्लास नहीं, जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है उसको ब्राह्मण बनना चाहिए और ब्राह्मण बनकर संन्यास लेना चाहिए. दिल दहल गया होगा सबका. चाहे पुरुष हो, कोई स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको सबको संन्यास की तैयारी करनी है. ठीक है ना, डंडा नहीं, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि भगवान मत डालने और डंडा जरूर ग्रहण करें. संन्यास का मतलब परिभाषा क्या दे रहे हैं भगवान गीता के छठे अध्याय के पहले श्लोक में, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, ससन्यासी च योगीश नाच निर्ग्रह नाचक्रिया. हाँ, चक्रिया. ऐसा नहीं है कि जो अग्नि को ज्वलित ना करे या कोई कार्य ना करे वो सन्यासी है. अनाश्रिता कर्म फलम, जो अपने कर्म फलों का भोग ना करे, उस पर आश्रित ना रहे, वो सन्यासी है. तो सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. और जैसे बताया कि जब भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रह गोलक भाए, तो अगर घर में अनुकूल परिस्थितियां हैं तो फिर चैतन्य महापुरुष क्यों त्यागा, है ना. और अगर घर में कोई लड़ाई है, कोई फेवरेबल नहीं है, तो त्याग देना चाहिए. दोनों परिस्थितियां ठीक हैं, लेकिन अगर घर में रह भी रहे हैं तो फिर सन्यासी की तरह रहना है. और फिर वानप्रस्थ अवस्था में अवश्य आना चाहिए. जब हम किसी ऐसी अवस्था में आ जाए वानप्रस्थ की अवस्था में, तो पूर्ण रूप से हमें फिर सारे कार्य त्याग करके पूर्ण रूप से फिर सेवा में लगना चाहिए. और अगर हम लोग घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो फिर हमें त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. बेसिकली अनाश्रिता कर्म फलम होना अति आवश्यक है, वो संन्यास है. तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करेंगे इस श्लोक में से जो बहुत से सिद्धांत है इसका कुछ मात्र लेश मात्र अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव बिंद की, ग्रंथ राशि में भागवतम की, विकुरेश्वर पंडित जी की, दधीची मुनि की, निताई गौर प्रेमानंद प्रभुपाद.